Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ki prathama adhyaya sambandh bhashya ki vichar chal raha hai. To hum log ye vichar kar rahe the कि ये आत्मज्ञान जो बार बार जो कारण बता रहे हैं उसके पीछे उपाय जो है बताते हैं, निद्रा आलस्य को छोड़ना है, विषय में इंद्रियों को रोकना है और सत्व शुद्धि, रज तमसा, रजगुण और तमगुण का नाश करके सत्व में ही स्थिर होना, ठीक है, निष्प्रियता, समह, बहुत सारे उपाय बताए. बहुत सारे क्या है, मूल तो साधन चतुष्ट है, समदम उपरम है, तितिक्षा श्रद्धा समाधान. हाँ, जो साधन जो चतुष्ट में जो सड़क संपत्ति है उसी में निष्ठ बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, वही तो है आखिर. तो वहां तक ही यानी मुक्ति तक, और मुक्ति क्या है, जीवन मुक्त पुरुषों के लिए भी कहा गया कि हमेशा मन को निग्रह करना, इंद्रियों को निग्रह करना. जीवन मुक्त पुरुषों के लिए भी एक एक जगह में ऐसी आया, और तो सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है. वो निष्प्रियता, ठीक है. और बताया त्याग परिग्रहाणाम, परिग्रह का त्याग करना. जीर्ण काषाय धारणम, काषाय वस्त्र को धारण करना, और काषाय वस्त्र भी वो भी जीर्ण हो. ऐसे नहीं कि थोड़ा पुराना हो गया बोल फेंक देना है और नया नया कपड़ा को, चकमक चकमक कपड़ा को पहनना है. ऐसे बहुत सारे ऐसी सब कुछ ऐसे हर व्यक्ति के लिए ये छोटी चोट है. परिग्रह नहीं करना, बहुत एक अच्छी बात जो है योग दर्शन में आया. अपरिग्रह में परिग्रह नहीं करोगे तो क्या फल प्राप्त होता है, इतनी बढ़िया बात उन्होंने कहा. अपरिग्रह में जो है आदमी जब स्थिर हो जाता है, संग्रह नहीं करता है, परिग्रह नहीं करता है, तो उसका जो है जन्मांतर का जो कथा है, कुछ घटना है, उसको बोध हो जाता है. अब बताइए नहीं समझे हैं? जन्मांतर में क्या क्या, पूर्व जन्मों में जन्मांतर में क्या क्या हुआ है, यदि अपरिग्रह में कोई स्थिर होता है, परिग्रह नहीं करता है, सामान को ज्यादा बटोरता नहीं है, तो परिग्रह में कोई स्थिर हो जाता है तो जन्मांतर की उसकी कथाएं उसको बोध हो जाता है, याद हो जाती है. अब कितना बड़ा फल है, आश्चर्य हो जाएगा कोई. अब कोई बताएगा कि मुझको ये याद होती है, ऐसा है वैसा है, कुछ सिद्धियां, कोई कुछ बताता है. सिद्धियां तो कुछ अलग अलग प्रकार प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ जो है ज्ञान मार्ग में ऐसे आसानी से एक एक चीज प्राप्त हो जाती है. आश्चर्य हो जाओगे आप, आसानी से प्राप्त हो जाती है. और जबकि ये सिद्धियां जन्मांतर की किसी की कथा यदि याद आती है, कोई सिद्धि कोई प्राप्त करता है, उसका अलग से एक साधना करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है अलग से. लेकिन ये ऐसा एक चीज है कि कोई अपरिग्रह में परिग्रह नहीं करता है, वस्तुओं को संग्रह नहीं करता है, तो उसको जन्मांतर की बात जो है याद आ जाती है. आप लोग इसका क्या फल होगा जानते हो क्या? बड़े बहुत सिंपल है चीज, बहुत सिंपल है. आपको यदि कुछ जन्मांतर की बात यदि याद आएगी कि आप अपने को एक सामान्य व्यक्ति एक चार दीवार के अंदर एक गृहस्थ होकर जो जी रहे हैं, ऐसा आपको अच्छा नहीं लगेगा. नहीं बात समझे? आपको जन्मांतर की बात अपरिग्रह से, परिग्रह नहीं करोगे, अपरिग्रह से जन्मांतर की कथा का बोध हो जाता है. योग दर्शन का ये फल है अपरिग्रह का, पूर्व जन्म याद आ जाए. अच्छा, आपको लगेगा कि पूर्व जन्म में मैं एक योगी था, अच्छा कि योगी था, मैं ऐसे साधना कर रहा था, ऐसा मेरे अंदर में इतना शक्तियां थी ऐसा। आपको जब ज्ञान होगा तो फिर आप एक सामान्य घर में भी गृहस्थ जीने के लिए इच्छा होगी क्या? मैंने सच बता, एक बात है। इसलिए जब आप परिग्रह नहीं करोगे तो धीरे 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 ये बोध होगा, और बोध होने के बाद आप अपने को एक सामान्य व्यक्ति, एक गृहस्थ, किसी के पत्नी की मैं पति हूँ, दो बच्चे का मैं पिता हूँ, ऐसे आपको बोलने के लिए, रहने के लिए एक जगह में, छोटा सा एक एरिया में रहने का इच्छा ही नहीं होगी आपको। अपने आप घर पर छूटे हो। एक तो अपरिग्रह से तो बहुत है, लेकिन इसका ही फल मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ऐसा लगता है, इसलिए हम लोग छोड़ छाड़ कर आते हैं। ये कोई चीज जो मैं जो बोल रहा हूँ, ये कोई सुना सुनी नहीं बात नहीं बता रहा हूँ। कभी एक अनुभव, एक टुकड़ा जो है, एक अनुभव याद आती है, आप लोग बता दो तो कुछ 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 कई चीज याद आती है, तो फिर आपको मैंने बता देता हूँ ऐसा, नहीं तो इसे कोई बात नहीं है, चीज को समझिएगा। और जो है कि हिंसा नहीं करोगे, मन को दमन करोगे, ये सब अपने आप हिंसा नहीं होगी। अब अहिंसा का भी, अब अहिंसा के यदि आप हिंसा नहीं करोगे, हर व्यक्ति के साथ थोड़ा समान व्यवहार करोगे, नहीं लूटोगे, कटुवाणी नहीं सुनाओगे, इसी प्रकार की हिंसा, हिंसा तो आप डीपली सोचोगे ना, आपका पल पल शरीर से हिंसा ही हिंसा होती है, हिंसा हिंसा होती है। कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा बोल दिया, उसे थोड़ी जमा के दबा के थोड़ी नहीं बोलने से अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ी सी ऐसा कहा उसको थोड़ी जोर से बोलने से अच्छा लगता है, ये भी हिंसा ही है। हिंसा आप पल पल जब आप पूरा अंतर्मुखी पर सोचोगे ना कि आप छोटे छोटे प्राणियों के प्रति कैसे हिंसा कर रहे हैं, जड़ वस्तु से लेकर आखिर बड़े बड़े चेतन पुरुष यानी पिता माता भाई बंधु, जड़ वस्तु से, चिंटी से लेकर के, जड़ वस्तु से लेकर के, पत्थर से लेकर के भी आप समझ नहीं पाओगे कैसी हिंसा होती है। अब रास्ते में जाओगे, पत्थर के देखोगे ना, पत्थर को यूं करना रखने की इच्छा नहीं होगी, यूं करना फेंकने से फेंकने जाओ इच्छा, अब आश्चर्य हो जाओगे। एक बार कोई अच्छा एक उदाहरण दे रहा था, बुद्धदेव बैठे थे कोई सभा में, तो उनके यहां एक मच्छर बैठा, उस मच्छर को उन्होंने ऐसा सर भगा दिया जैसे काटा होगा, तो कोई शिष्य ने देख रहा था, तो फिर जो है वो उड़ जाने के बाद फिर बुद्धदेव ने फिर हाथ को लेके फिर उसको, वहां मच्छर बैठा नहीं है, फिर धीरे से ऐसा करके फिर हाथ को ला के रखे, फिर बातचीत करने लगे फिर सभा में। तो कोई शिष्य ने देखा, और फिर बुद्धदेव आने के बाद कहा कि आपने उसमें कोई मच्छर बैठा था, आपने उड़ाया, लेकिन दूसरी बार फिर मच्छर उड़ जाने के बाद भी आप हाथ को लेकर वहां धीरे से इसे क्यों कर रहे थे? क्योंकि पहला बार में जो बहुत काटा, काटने बाद मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध आया, और उसको यूं करना थोड़ा गुस्सा से थोड़ा उड़ा दिया, फिर लगा कि मैंने गुस्सा से उसको भगा दिया, इसलिए हाथ को फिर स्वयं करके धीरे से फिर आदत डाला, फिर ऐसी उड़ाना चाहिए। व्यक्ति को जब साधना करता है, अंदर प्रवेश करता है, तो उसको पल पल उसकी हिंसा उसे महसूस होता है, महसूस होता है, तब जाकर फिर व्यक्ति आगे डेवलप करता है। उस जिसको महसूस नहीं होगा विकास कैसे करेगा, महसूस नहीं होता है। चलते समय फिरते समय क्या हिंसा होती है, बात करते समय क्या हिंसा होती है, खाते समय क्या हिंसा होती है, उसे महसूस नहीं होता है। तो ये जो है, जब हिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाता है तो क्या होता है, तत्सन्निधु वैरस त्याग, उस व्यक्ति में, व्यक्ति के जो चारों तरफ सन्निधि में रहने वाले उन लोगों में, वे लोग जो है उसके प्रति जो शत्रुता भाव है उसको त्याग देते हैं। वो जहां रहता है उसके अंदर, अपने अंदर यदि हिंसा नहीं है, तो उसके आजू बाजू में सन्निधि में रहने वाले जो छोटे प्राणी से लेकर बड़े प्राणी तक जो भी रहते हैं, उसके प्रति जो धीरे धीरे जो हिंसा कर रहे थे, जो शत्रुता भाव था, वैर भाव था, वो धीरे धीरे त्याग देते हैं। अब त्याग दिया तो फिर शांति शांति है। शांति कहां से टूटोगे? पहले तो अपने अंदर में पहले बनाओ, फिर सामने वाला भी प्रेम करेगा, फिर तो शांति मजा ही मजा होता है। ये सब जो है कोई सामान्य बात नहीं, ये इसका फल ऐसा, इसका फल ऐसा जो बता रहे, पूरा खरे उतर जा चीज मिलती है।
तथा आगे चार अने अर्थ बने अर्थात अर्थवेद में अर्थवेद संबंधी जो उपनिषद है उस उपनिषद में विशुद्ध पेक्ष आत्मज्ञानम दर्शयति। पाठ मिला सभी को कि अंतकरण शुद्धि को अपेक्षा करके आत्मज्ञान को दिखा रहे हैं यानी अंतकरण शुद्धि अपेक्षा ही जिस आत्मज्ञान का अर्थात आत्मज्ञान के लिए अंतकरण की शुद्धि की अपेक्षा है तो इसलिए दिखा रहे हैं दर्शयति दिखा रहे हैं। जन्मांतर सहस्रेषु यदा क्षीणास्तु क्लिबिषाः तदा पश्यति तदा पश्यन्ति योगेन संसार उच्छेदनम् महत्। जन्मांतर सहस्रेषु यदा क्षीणास्तु क्लिबिषाः अने हजार जन्मों में हाँ? यदा अने जब हजार जन्मों में क्षीणास्तु क्लिबिषाः हजार जन्मों में ऊपर से कृताः जोड़ सकते हो हजार जन्मों में किया हुआ किल विषाहा पापों को है? जब क्षीणा यानी जब क्षीण हो जाते हैं सारे पाप हजार जन्मों में किया हुआ जब पाप जब क्षीण हो जाते हैं तदा पश्यन्ति योगेन संसार उच्छेदनम महत्। फिर जो है वह तब तदानी फिर तब योगेन योग से संसार का उच्छेदनम है? संसार का उच्छेदन क्या है ना महत्। अब ये महत्व तो ये नपुंसक लिंग है तो इसलिए इसको ज्ञान ले जाओ चलेगा और ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान लो ठीक है और आत्म ब्रह्म का भी ब्रह्म को भी देखता है ऐसे भी ले सकते हैं तो ज्ञान लो यहाँ तो योग से संसार का उच्छेदन हाँ महत आत्मज्ञानम पश्यन्ति यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। संसार का उच्छेदन का जो कारण है संसार का नाश का जो कारण है आत्मज्ञान को देखता है प्राप्त करता है। यस्मिन् विशुद्धे विरजे च चित्ते च आत्मवत् पश्यति यतः क्षीण दोषाः। फिर तो यस्मिन् उधर जो है चित्ते चित्ते भी सप्तम यंत्र है और यस्मिन् इन दोनों को जोड़ देना है। विशुद्धे विरजे च यस्मिन् चित्ते यानी चित्त जो है जब शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है ठीक है किसका यतयः यतियों का जो प्रयत्न करते हैं योग में जो लगे हुए हैं जिनका क्षीण दोषाः हाँ जिनका दोष क्षीण हो गया क्षीण दोषाः यतयः ठीक है। अब जो है उनका यदि जब शुद्ध अब देखो शब्द जो कैसे प्रयोग करते हैं कि विशुद्ध भी है और विरज भी है हाँ? शुद्ध भी होना चाहिए शुद्ध यानी पवित्र पवित्र होना चाहिए और निर्मल भी होना चाहिए तो मैंने एक बार बता रहा था ना हाँ निर्मल और पवित्र के विषय में बता रहा था हाँ बता रहा था। देखो कभी कभी ये जो है ये गंगा जल तो पवित्र है गंगा जल कौन काट सकता है गंगा जल पवित्र ही पवित्र है लेकिन कभी निर्मल नहीं होता है। हम लोग गंगा जल किनारे रहते समय स्नान करते समय अब ठंडी दिनों में पूरा एकदम शीशा के जैसे पानी दिखाई देता है 10 फीट के नीचे भी रेती जो है एक एक रेती दिखाई देता है आपको लगेगा कि 1.5 फीट के नीचे आप उतर जाएंगे स्नान करने के लिए डूब जाएंगे उसे और वो 10 फीट गड्ढा रहता है इतनी शुद्ध पानी रहता है लेकिन जब कभी बारिश होता है ऊपर में जब उत्तरांचल बारिश होता है तो सारा कूड़ा कचरा मिट्टी मिट्टी से आ जाता है पूरा गंदगी गंदी हो जाता है। अच्छा गंदगी हो गया सोच करके आप गंगा जल पवित्र नहीं कहेंगे ऐसी तो बात नहीं है गंगा जल ही होता है पवित्र ही होता है लेकिन कभी कभी मिट्टी फिट्टी गिर के फिर वो भी निर्मल नहीं होता है अनिर्मल हो जाता है ठीक है। तो शुद्ध भी चाहिए पवित्र भी चाहिए निर्मल भी चाहिए ऐसे अंतकरण भी जो है अंतकरण शुद्ध भी चाहिए निर्मल भी चाहिए। अच्छा और एक चीज भी हम लोग देखते थे कि गंगा जल निर्मल भी है और पवित्र भी है लेकिन चंचल भी है बड़ा गति से भागती है। यदि आप ये सोच करके गंगा जल बड़ा पवित्र जल है और निर्मल जल है और डुबकी एक लगा करके मैं पवित्र हो जाऊंगा बस आपका प्राण चला जाएगा प्राण चला जाएगा आपका यूं गना लेकर के घुसा देगा अंदर में उस नदी में बहा देगा खत्म हो जाओगे आप। इसलिए यदि चंचल भी होगा तो तो भी नहीं चलेगा। एक बहुत एक अच्छे महात्मा थे, उनका शरीर छूट गया है। हम लोग एक महीना में जितनी याद करेंगे पढ़ेंगे, गुरुजी के पास पढ़ते थे, और वो जो है ऐसी आएंगे दो दिन के अंदर में सारा एक दिन का पाठ दो दिन में सुनाएंगे, उतनी और सुनाएंगे भी नहीं, समझ के लेंगे। क्या दम था, क्रांति चैतन्य है। शरीर छूट गया है, शरीर छूट गया नहीं, छोड़ दिया है शरीर को, छूट गया है नहीं, वो तो मेरा उम्र होगा, मेरे से कम होगा। और इतनी बुद्धिमान था लेकिन चित्त चंचल है। चित्त चंचल होने के कारण जो है इतने परेशान था व्यक्ति, मेरे से आगे मेरे से सीनियर है, स्वामी जी के पास पढ़ कर थे, लेकिन मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं, और मैं आकर के थोड़ा पढ़ करके लघु पढ़ करके फिर उनको पढ़ाया मैंने। अब जबकि मेरे से कितनी तेज है, केवल मेरा जो है थोड़ा सा शांत होकर थोड़ी सी रहता था, मैं धीरे पढ़ता था, करता था, प्रयास करता था, तो उससे वो प्रभावित हुआ। फिर जो है वो सोता था, फिर मैंने उसे उठाता था, फिर बुला करके, फिर देखिए थोड़ा हम मिलकर पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, थोड़ा सा ग्रुप बनाएंगे, ऐसा करते करते फिर मैं उनको पढ़ाया लगाया फिर काम में, क्योंकि वो पढ़ करके कहीं छह महीने से छोड़ दिए थे, नहीं मुझे पढ़ना नहीं है। और जब लगाएंगे ना, छह महीने का पाठ को 15 दिन में लगा करके सुनाएंगे, क्या दम था। आखिर में जो है ये ओंकारेश्वर में नर्मदा कौन सा नदी है, नहीं ओंकारेश्वर शिप्रा कहाँ है, नर्मदा है ना, नर्मदा किनारा है ना, तो नर्मदा में, हाँ नर्मदा में वो शरीर अपने कोई नहीं जानते हैं, थोड़ा दूर उठ के गए, फिर शरीर छोड़ दिया अपने। मेरा कहना है कि चंचल है, इतना तेज होते हुए भी मन चंचल है, तो फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मन में आया होगा बात अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो है आप देखिएगा, मैं जो आपको जो चीज दे रहा हूं आप समझ नहीं लगेगा, लेकिन योग में लगे नहीं है। बुद्धि तेज है आप समझ रहे हैं, बुद्धि तेज मालूम पड़ रहा है, पकड़ रहे हैं छोटी छोटी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजें पकड़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन लग नहीं पाते हैं, उसमें टिक नहीं पाते हैं। क्या गिरीश भाई समझ रहे हैं क्या, एक तो समझ रहे चीज को, बुद्धि तीक्ष्ण है तो समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और तात्पर्य अर्थ को भी पकड़ रहे हैं, शुद्धता है, पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी आप उसमें टिक नहीं पा रहे, स्थिर नहीं हो पा रहे, तो जरूर चंचलता है। समझ गया ये बात, ऐसे पकड़िएगा कहां हम कहां फंसे हैं, और कहां शुद्धता नहीं है वहां समझिएगा, कहां तेज नहीं है वहां समझिएगा। अच्छा, तो इसी प्रकार जो है विशुद्धे विरजे चित्ते य आत्मवत पश्यति यतः क्षीण दोषा। तो उस आत्मा को यानी आत्मा बाला को, आत्मवत जो है यहाँ आत्मा बाला अर्थ करना पड़ेगा, आत्मा के समान देखता नहीं, आत्मा बाला को देखता है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो कहा कि उस इसको ऐसा है, तम एतम वेदानुवचनेन, वेद पाठ के द्वारा जो उच्चारण अनुच्चारण पूर्व पढ़ते हैं, जो वेद पाठ करते हैं उस वेद पाठ से और जो यज्ञ से, दान से, तप से, और जो कहा कि ये जो अनाशकेन अर्थात जो उपवास से, यहाँ तो लिख दिया है, लेकिन जो है जो नियमित जो आहार करता है, ठीक है, आहार जो संयम करता है, और उसको ही आप उपवास कहिएगा, उपवास कहिएगा। उपवास का मतलब क्या है, उपवास तो यही तो समझ रहे हैं, है तो उपवास का अर्थ कि भगवान के सन्निधि में रहना, यानी अंतकरण में भगवान का नाम लेना हृदय में, ये तो भगवान के अत्यंत सन्निधि है, ये तो उपवास है। लेकिन लोग जो समझ के रखेंगे कि थोड़ा सा भोजन को नहीं खाना, थोड़ा फलाहार करना ही उपवास है, इसी विषय में नियमित आहार समझ लीजिएगा। यानी नियमित आहार से ये इसमें आया है महाभारत में, भीष्म जी, पितामह भीष्म जी की जगह में बता रहे हैं कि उपवास किसको उपवास कहते हैं, जो नियमित आहार करता है तो वह नित्य उपवास करता है।